Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
And when he goes to office, he opens the internet. How did he listen to it? कोई जरूरत नहीं है आने का. कल एक माताजी ने कहा, प्रेमपुरी आश्रम तो सर्वव्यापक भगवान जैसा सारा विश्व में व्यापक हो गया. प्रेमपुरी आश्रम व्यापक हो गया कैसे? इंटरनेट से. आज अमेरिका में आज का आज सुन लो प्रवचन, विश्व के किसी भी कोने में तुम तुरंत आज के आज ही सुन लो प्रवचन. ये प्रवचन तुम आज रात को 9:30 के बाद सुन लो घर में बैठ कर, अभी जो मैं कर रहा हूं. हाँ, ये प्रेमपुरी आश्रम का देन है विश्व में. शायद इस तरह का लेटेस्ट आध्यात्मिक प्रवचनों को, विशाल प्रवचन की संपदा को इंटरनेट में देने वाला हाँ ये पहला है. तो इस बात के लिए प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्टियों को धन्यवाद देनी चाहिए. वो नहीं, वो तो आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने उसको संकेत किया है. आप लोगों के सोच अनुकूल ना होता तो वो क्या करता, वो प्राविधिक है वो, है ना. तो कल माताजी ने जो कहा ना, हमको बड़ा खुश, बड़ प्रसन्नता हुई कि आ, ये तो भगवान की तरह प्रेमपुरी आश्रम भी सर्वव्यापक हो गया है, देख लो. तो हमने उसको ये कहा, तो बड़ा कठिन होता था तो रोज पत्नी पतियों से डांट पड़ती थी. तो गोपियों को बहुत हैरानी हुई, तो किसी महात्मा के पास जाकर कहा कि महाराज, ये हमारा मन जो है ना, उसके चरण में चिपक गया है, वहां से निकालने के कोई उपाय है? है कहा. जब उद्धव जी गए तो सब क्या कर रहे थे? भागवत में लिखा है, जमुना के किनारे बसे प्राणायाम करके वहां से निकालने के लिए योग कर रही है. कैसे निकले? अब हम जोड़ने के लिए योग करते हैं, वो निकालने के लिए योग कर रही है. देखो, भवद अधीनम हृत पद्मम भवद अधीनम. उन ब्रजवालाओं का हृदय कमल तो परमात्मा के अधीन हो गया, तब उनको योगक्षेम बड़ा मुश्किल हो गया, व्यवहार चलाना मुश्किल हो रहा था. लेकिन शंकराचार्य जी यहां एक नई बात करते हैं, यदि तुम्हारा मन हृदय भगवत अधीन हो गया तब तुरंत भगवान तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तब तुम्हारे हर योगक्षेम भगवान वहन करेंगे, तुमको चिंता ही नहीं करना. मन यदि भगवान के चरण में लग गया तो मेरा क्या होगा ये तुमको सोचने की जरूरत नहीं है. ये सोचने का काम किसका? भगवान परमात्मा का है, शिव का है. ऐसे कई उदाहरण है भागवत में, कई उदाहरण है. हमारे श्रद्धेय गुरु महाराज ने एक दृष्टांत दिया, किसी राज्य में एक बड़ा राजा था कहते हैं. वहां एक पानी के लिए नहर बनाना था, सिंचाई का, कहीं से सरोवर से पानी लाना था गांव में सिंचाई के लिए. तो राजा की आज्ञा हो गई, राज आज्ञा कि सारे लोग जो है वह श्रमदान के लिए आ जाए, नहर खोदना है. तो हर घर से एक आदमी जरूर आवे, हर घर से एक आदमी तो जरूर आवे और नहर खोदने का श्रमदान करे. पंजाबी भाषा में कार सेवा बोलते हैं, कार सेवा, कर सेवा को कार सेवा हो गया, और कुछ नहीं है, सेवा करो तो श्रमदान करे. तो सब लोग अपने अपने घर से एक एक परिवार को भेज रहे थे. तो कहते एक बुढ़िया थी, बहुत बूढ़ी थी, वृद्ध थी, वो अपने घर में अकेले रहती थी और कोई था ही नहीं. वो हमेशा भगवान शिव के ही भक्ति ध्यान ज्ञान योग में लगी रहती थी, क्योंकि अब शरीर से कोई श्रम तो कर नहीं सकती थी, तो मन से हमेशा भगवान में चित्त को लगाए रखती थी. लेकिन राजा के कर्मचारी थे, जाके बुढ़िया को कहा, ए बुढ़िया, राजा की आज्ञा है हर घर से एक आदमी श्रमदान के लिए आना ही चाहिए, तेरे को चलना पड़ेगा. उसने कहा कि महाराज मैं तो इष्ट वृद्ध हूं, मैं कैसे जाऊं, मैं तो कर नहीं सकती हूं। बोले हम नहीं जानते, राज आज्ञा है तो घर स्वतंत्र घर में रह रही है, तो अकेले हो तो भी तू ही चल। मैं क्या करूंगी वहां जाकर, कैसे करूंगी? उसने कहा कि नहीं तो घर छोड़ के जा, ये राज्य का नियम है, राजा की आज्ञा है। बड़े दुखी हुई, क्या करूं। इतने में कहते हैं एक बटुक बच्चा आ गया, अनजान कहीं से आ गया। पूछा माताजी क्या हो गया? बोले राजा की आज्ञा हो गई है कि श्रमदान के लिए जाना पड़ेगा, अब मैं ऐसी हूं, बूढ़ी हूं, मैं कैसे जाऊं, कुछ नहीं कर सकती हूं। तो उस बच्चा ने कहा, उस बालक ने कहा कि तुम्हारी तरफ से मैं जाता हूं, मैं जाऊं, तुम यहीं रहना, भोजन बनाना, काम करके आऊंगा, मैं तुम्हारा बनाया हुआ भोजन खाऊंगा, तुम्हारे तरफ से हम हाजिरी लगा देंगे, इसलिए तुम राजदंड के भागी नहीं बनोगी, चिंता नहीं करना। वृद्ध माता ने कहा कि जाओ बेटा, अब मैं क्या करूं, ये तो अच्छा ही हुआ तुम आ गए हो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया भोजन बना के रखूंगी, काम करके आ जाना। कहते हूं बालक चला गया काम करने, और वहां जाके रजिस्टर्ड में लिख दिया फलाने बुढ़िया के तरफ से मैं आया हूं। तो हो गया, हाजिरी हो गई, बुढ़िया की हाजिरी हो गई ना। कहते हैं बड़ा काम करने लगे तो सब लोग टोकरी की मिट्टी निकाल रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। तो इतनी जल्दी जल्दी, बालक है ना, तो जल्दी जल्दी दौड़ के जाए और एक टोकरी मिट्टी फेंके, तब तक तो वो दो टोकरी फेंक दें। हाँ, लोगों को आश्चर्य, ये बालक किसका बेटा है, किसका पोता है, किसका बेटा है? लोगों ने पूछा तू किसका बेटा है? बोले वो माँ है ना एक, मैं उसका। तू उसका बेटा है? उसका तो कोई बेटा नहीं था, अकेले थी। बोले मैं उन्हीं का बेटा हूं, मैं कहीं बाहर था, आ गया था। अच्छा भाई, बड़ा भारी काम करे और फटाफट, और ने क्योंकि और एक टोकरी फेंके वो दो टोकरी फेंक दे, तो बाकी समय में वो वहीं खेलने लग जाए। जब कहते हैं कि एक बार जब राजा निरीक्षण करने आया, राजा जब निरीक्षण करने आया तो देखा वो खेल रहा था। राजा ने कहा कि ये कौन है, ये खेल रहा है, काम न करके खेल रहा है, ये कौन है? बोले एक वो जो बूढ़ी है ना, बूढ़ी की तरफ से आया ये काम करने। तो राजा के सामने ही उस मंत्री ने जोर से एक डंडा मारा उस बालक को, मार डाला डंडा। आगे आएगा श्लोक, जोर से डंडा मारा, तू यार खेलने आया कि काम करने आया है? अपने आप भी काम नहीं करता और दूसरों का ध्यान बटा रहा है। मारा जोर से डंडा, भाग जा यहां से। कहते जैसे डंडा मारा उस मंत्री ने, तो भगवान वहां साक्षात प्रकट हो गए, भगवान शिव ही थे, देख लो। तो कहते शंकराचार्य जी, मेरे पास डंडा भी नहीं है, मंत्री के पास तो डंडा था, मारा और आप खुश हो गए, मेरे पास तो डंडा भी नहीं है, मैं मारूं क्या? आगे आएगा श्लोक, यही भाव यह प्रकट किया है। बस तुम बाद में जो बुढ़िया को पता चला, वो तो साक्षात शिव थे, तो क्या किया उसने? अपने मन को, बुढ़िया ने अपने मन को भगवान के अधीन कर दिया था, तो भगवान उसके अधीन होकर उसके तरफ से काम करने चले गए। ऐसे अनेक उदाहरण है, वो महाभारत में ये अनेक उदाहरण है, गीता में आया है ना, अनन्या चिंतयंतो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, कोई यदि मेरे को अपना हृदय समर्पण कर देता है, अनन्य चिंत्य हो जाता है, फिर उसको अपनी योगक्षेम के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, उसकी योगक्षेम मैं खुद वहन करता हूं, वहां में हम। कहते हैं कि एक बहुत बड़े विद्वान गीता पर अपनी टीका लिख रहे थे, टीका लिखते लिखते इस श्लोक में पहुंच गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम, मैं खुद वहन करता हूं, इसका अर्थ होता है। बोले भगवान क्या किसी का योगक्षेम वहन करेंगे, क्यों ढोएंगे योगक्षेम? ये वहाम्यहम ये गलत हुआ है, इसका उच्चारण लिखने में प्रूफ मिस्टेक हुआ होगा, प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा। वहाम्यहम की जगह वधाम्यहम करना चाहिए। मैं किसी को कह देता हूं, फिर वह उसके योगक्षेम को पूरा कर देता है। वो खुद क्या वहन करेंगे योगक्षेम? भगवान वधाम्यहम कहते हैं, वहाम्यहम को काट के वहां वधाम्यहम लिख दिया। वह क्या कि वह पंडित बड़े गरीब थे, लेकिन भगवान की निष्ठा थी, गीता पर बहुत निष्ठा थी, और उन्हीं की कृपा से गीता पर टीका लिख रहे थे। ये बहुत प्रसिद्ध घटना है, ये सत्य घटना है। तो कहते हैं कि एक अनजान व्यक्ति उनको रोज दाल चावल सब्जी आटा लाकर वो बालक दिया करता था, अनजान कहीं से आता था, रोज कोई न कोई नया नया रूप धारण करके आवे, कभी कोई बालक आवे, कहीं कोई बालक आवे, कहीं कोई बालक आवे, पंडिताइन को वो दे दे और पंडिताइन उसको पकावे, रखे, तैयार करे, पंडित आराम से खाए और करने लग गए, गीता के टीका लिखने लग गए। एक दिन वह बालक, एक बालक आटा दाल घी तेल सब लेके आ गया, माताजी ये लो पकाओ खाओ। तो उस माता ने देखा उसके मुख में घाव हुआ, उस बालक के मुख में तो घाव हुआ। उसने पूछा, बेटा ये क्या हुआ तुम्हारे मुख में? कल तो था नहीं, आज ये घाव कैसे हो गया? बोले आपके पंडित जी ने ऐसा कर दिया। पंडिताइन तो बड़े गुस्से में हो गई, भाई ये पंडित का क्या दिमाग फिर गया भाई, इतना छोटा बालक, इतना मासूम बालक है और इसके मुख में क्यों ऐसी चोट मारा, क्यों मारा इसी तरह? आने दो पंडित को, वो तो चावल दाल दे गया और चला गया। पंडित जी जब खाना खाने आए तो पत्नी तो बिगड़ पड़ी, तुमने उस बालक के मुख में क्यों मारा भाई, बेचारा रो रहा था, इतना बड़ा घाव हुआ। पंडित विचार करने लगा कि मैंने तो किसी को मारा नहीं, क्या हुआ, मैंने तो किसी को ऐसा नहीं किया है। बोले हाँ वो बेटा कह गया, वो चावल रोज लाकर देता था, वही तो पका के मैं तुमको खिलाती थी, मैं खाती थी, नहीं तो और कौन लाता, तुम कमा के ला रहे हो, तुम तो लगे रहे हो भगवान भगवान गीता की व्याख्या कर रहे हो, तुमको आटा दाल की चिंता है, वो तो बेचारा कहां से लेके आता है पता नहीं कौन है। कहते हैं पंडित जी को ध्यान करने लगे तो उनको दिखा कि भगवान श्री कृष्ण ही थे और कोई नहीं था। वास्तव में योगक्षेम खूब वहन कर रहे थे, वो किसी को कह नहीं रहे थे, खुद कर रहे थे, है आटा दाल खुद लेकर आ रहे थे। ओहो, मैंने जो उनकी वाणी को काट दिया, इसका मतलब उनके मुख में वो चोट पहुंची। ये ठीक वहाम्य ही है, वधाम्यम नहीं। तुरंत जाके उन्होंने उसको सुधार लिया, सुधारा तो दूसरे दिन तो उसके मुख में घाव ही नहीं है, बेटा आ गया। बेटा तुम्हारा घाव ठीक हो गया? बोले हां ठीक हो। किसने ठीक किया? बोले तुम्हारे पति ने। बाय, फिर उसको समझ में नहीं आ गया क्या हो गया। पति से उसने कहा कि ऐसा ऐसा, आज तो उस बेटे का मुख बिल्कुल ठीक हो गया, तुमने कैसे ठीक कर दिया? मैंने पूछा तो कहा तुम्हारा नाम लिया ले रहा था, वो पंडित जी ने ठीक कर दिया, तुमने कैसे ठीक किया? तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य लगा, ओहो योगक्षेम वहाम्यहम है, ये भगवान खुद बोलते जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। परमात्मा में तो कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी हमारे में है, है? परमात्मा तो आज भी हमारे अधीन होने के लिए तैयार है, पर हमारा मन, हमारा वृत्ति, चित्त वृत्ति परमात्मा के अधीन होना चाहिए। एक बार हमारा हृदय परमात्मा का अधीन हो जावे, परमात्मा हमेशा योगक्षेम वहन करने के लिए तैयार है। ये भाव यहां है। यदि यम मृत पद्मम यदि भवदधीनम पशुपते त्वदीयम यस्तम त्वदीयस्तम संभो भवसि भवभारम च वहसि। उसी के आप होते हैं और उसके भवभार, भवभार माने योगक्षेम, संसार की व्यवस्था, उसके सारी व्यवस्था पूरा करने के काम उनका। अखंडानंद जी महाराज जी ने योगक्षेम वहाम्यहम इस शब्द की व्याख्या में बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया। कहते हैं तुम लोगों हंसने की बात भी कर दूं, गहरा वेदांत तो सुबह ही सुनने के लिए आओ, सुबह के प्रवचन एकदम डीप वेदांत, उसके लिए तो सुबह ही आओ, मिर्ची मसाला अभी होगा, इस समय चाट पकौड़े मिलेगा या मिर्ची मसाला सहित, सुबह तो शुद्ध वेदांत चलेगा वहां, थोड़ा मिर्ची भी डाल दे, मसाला भी डाल दे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने दृष्टांत दिया था। कहते एक पंडित जी योगक्षेम वहाम्यहम इस बात को पूरा निष्ठा के साथ हनुमान चालीसा और हनुमान जी की सेवा करते थे। उनका नियम था रोज हनुमान जी के मंदिर में जाना और आसन लगा के बैठना और पूरा सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, उनका तो वही नियम था। कहते हैं उस पंडित जी की एक बेटी थी, थोड़ा जवान हो गई, मां बाप को चिंता होता ही है, लेकिन वहां केवल मां को चिंता हुई, बाप को चिंता नहीं हुई। यूं तो सब मां बाप को दोनों को चिंता होती है, लेकिन उस पंडित के व्यवहार में यह हुआ मां को बहुत चिंता हुई, बाप को चिंता ही नहीं, वो तो भगवान के भजन में लगा हुआ निश्चिंत होकर सुबह ही जाए, जल्दी उठकर पाठ करे, 12-1 बजे आए, फिर खा के थोड़ा आराम कर फिर जाए, फिर पाठ करे हनुमान जी की सेवा। तो कहते उस पंडित पत्नी ने कहा पंडित की, अरे तुम क्या रात दिन वही, रात दिन वही, बेटी जवान हो गई, उसकी शादी करनी है। वो कहता है कि तुम क्यों चिंता करती हो, भगवान ने कहा योगक्षेम वहाम्यहम, उसके सारी व्यवस्था मैं करता हूं कहा है, उसने कहा है तो करेगा, क्यों चिंता करती है। बोले ये कहते कहते 1 वर्ष हो गया, कब करेगा कब करेगा। बोले करेगा बेटा, तुम ज्यादा चिंता करती हो ना, करेगा, धैर्य रखो, हो जाएगा हो जाएगा। तो एक दिन जो है पंडित जी प्रार्थना करते करते उसके दिमाग में, और समय तो नहीं आता था उस दिन, पता नहीं कहां से आ गया, क्योंकि पत्नी बार बार उसको टोक रही थी, तो वो संस्कार दिमाग में आ गया। तो पाठ करते करते प्रार्थना करते करते बेटी जवान हो गई, शादी करनी थी, पैसा है नहीं, संपत्ति है ही नहीं, कोई साधन नहीं है, कैसे शादी करें, इतने दिमाग में आ गया और प्रार्थना करते जा रहे थे। तो सर्वांतरयामी तो हृदय में संकल्प आते ही वो तो उनको पता चल ही जाएगा, है ना। तुम कोई संकल्प करो और भगवान को पता न चले, ये संभव नहीं। तुम संकल्प करो, तुम्हारे पति को पता न चले, तुम्हारी पत्नी को पता न चले, ये संभव है, लेकिन परमात्मा को पता न चले ये संभव नहीं। तो परमात्मा को पता चल गया, हनुमान जी को पता चल गया, बेचारा चिंता में रह गया अचानक मेरी प्रार्थना करते करते। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने पंडित को संबोधन किया, पंडित तो चिंता न कर, तेरी बेटी की शादी के लिए कल 10,000 रुपया की व्यवस्था हो जाएगी। उस जमाने में 10,000 तो बहुत होता था है? आज की बात नहीं कह रहा हूं मैं। अब आज तुम 10,000 की जगह 10 करोड़ की मांग करो बेटी की शादी में, हम सुनते हैं ना बॉम्बे में ऐसे ऐसे धनपति भी हैं कि एक बेटी की शादी में 10 करोड़ क्या 50 करोड़ खर्चा करते हैं। हाँ ऐसा हम सुनते हैं, बताते हैं उसने फलाना ने वो सीप में बड़ा भारी शादी की रचाई है, कोई एरोप्लेन ही चार्टर करते हैं घूमते हैं और शादी करते हैं, है ना बहुत है। लेकिन उस समय बहुत था वो 10,000 रुपया, कहा कि कल 10,000 मिल जाएगा चिंता न कर। कहते हैं उसी पंडित के पीछे एक बनिया भी वो खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था हनुमान जी को। पंडित तो हनुमान जी की प्रार्थना में मस्त हुआ, हनुमान का कहा सुना नहीं, बनिया ने सुन ली। ये बनिया अन्यथा नहीं लेना हो, आपको बनिया नहीं कह रहा हूं मैं, बनिया माने बनिया वृत्ति वाला ने सुन ली, समझ गए कि नहीं। ये अर्थ ले लेना, मेरा लक्षणावृत्ति ले लेना, बादशाह लेके नहीं बैठना है। बनिया केवल वैश्य को बनिया कहते हैं ऐसा नहीं समझ लेना, बनिया वृत्ति वाले ने सुन ली। ब्राह्मण भी बनिया वृत्ति वाला हो सकता है, बनिया वृत्ति वाले ने सुन ली तो कल 10,000 मिलेगा पंडित को। ऐसा करते हैं आज ही पंडित से समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट। तुरंत जैसे वो पंडित जी पाठ करके प्रार्थना करके जाने लगे तो बनिया जाकर कहा, पंडित जी देखो एक समझौता करते हैं। बोले क्या? आपको बेटी की शादी करनी है ना? बोले हां। ऐसा करते हैं आज मैं आपको 5,000 दे देता हूं, आज मैं आपको 5,000 दे देता हूं, शर्त यह है कि कल जो दक्षिणा मिलेगी वो सब मुझे देना। पंडित ने विचार किया कि यहां रोज एक पैसा भी नहीं मिल रहा है, अचानक 5,000 के एग्रीमेंट आ रहा है, क्यों छोड़े। बोले ठीक है 5,000 दे दो। तो बनिया ने फट से 5,000 दे दी, क्योंकि एक ही दिन में डबल हो जावे एक रात में, इससे बढ़कर और बिजनेस क्या हो सकता है बोलो है? एक रात में डबल हो रहा है कि नहीं, उसने ये सोच ली। तो 5,000 दे दिया, पंडित जी चले गए 5,000 लेकर, जाके पंडिताइन को दिया, ले 5,000 है, अब बेटी की शादी होनी हो जाएगी, तैयारी करो। उसको पता नहीं था कि कल 10,000 मिलेगा। तो दूसरे दिन पंडित तो गया प्रार्थना करने बैठ गया, बनिया भी पहुंच गया। तो अब मिलेगा तब मिलेगा, इसको दक्षिणा 10,000, अब मिलेगा तब मिलेगा, अब मिलेगा तब मिलेगा है। 12 बज गया, 1 बज गया, कोई भी दक्षिणा लेकर नहीं आ रहा है वहां, और कल कहा था भगवान ने 10,000 दक्षिणा मिलेगी तुमको, ये क्या बात है। पंडित तो अपने नियम अनुसार पाठ प्रार्थना सब कुछ के घर के चलने लगे। बेटा तुमने कहा था कि कल जो चढ़ेगा सब मुझे देना, तुम घाटे में चले गए, एक भी पैसा नहीं आया देख लो। बेचारा पंडित के सामने मुख छोटा करके कहा कि हां देखो क्या करें, ये तो ऐसे ही होता है बिजनेस में, ऐसा ही होता है महाराज, नीचे ऊपर होता ही है। पंडित के सामने तो उसने ठीक कर दिया। जब पंडित गए तो उसको गुस्सा आया, हनुमान जी को मारा एक थप्पड़ कि हनुमान भगवान होकर झूठ बोलते हो, मेरा 5,000 बेकार चला गया, भगवान होकर भी झूठ बोलते हो, मारा एक थप्पड़ तो वो हाथ वही चिपक गया। अब हाथ छोड़ाने चाहता है छोड़ता ही नहीं, जोर लगा रहा है और गुस्सा हो गया, मेरा 5,000 तो गया और ऊपर मेरा हाथ भी पकड़ लिया, फिर लात मारा तो वो भी चिपक गया, लात भी चिपक गई। अब तो छूटने का नाम नहीं ले रहा है, रो रहा है। उधर बच्चे लोग विचार करने लगे, आज पिताजी गए कहां, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे, अभी तक दुकान नहीं पहुंचे, हमेशा हमसे पहले जाकर दुकान खोलते थे, अभी तक दुकान ही नहीं खुली है, कहां गए? हनुमान मंदिर जाते थे दर्शन करने, क्या हुआ? तो बच्चे लोग आए, क्योंकि चाबी तो उसी के झोले में था, किसके? पिता के। बच्चे लोग आए तो हनुमान से आलिंगन करके चिपक के बैठा था उसका बाप। कहे कि पिताजी ये कौन सी भक्ति है, ऐसा भी कोई भक्ति होता है तो भगवान को चिपक के छाती से लगा के खड़े हो गए? इतना समय हो गया, दुकान खोलना था, चाबी लेकर बैठ गए, चलिए। बेचारा बाप रोने लगा, अरे बेटा मैंने पकड़ रखा हनुमान को, यही मूर्ख पकड़ रहा है मुझे, छोड़ नहीं रहा है, है? तो बच्चों ने भगवान से प्रार्थना की, हनुमान जी से प्रार्थना, हे भगवान ये क्यों ऐसा किया, क्या अपराध हो गया मेरे पिताजी से, है? क्षमा करना महाराज, जो करना है, सवा किलो लड्डू कहो तो लड्डू ला के चढ़ाता हूं, हम चढ़ाते हैं, आप जो कहो वो करेंगे, आप हमारे पिताजी को छोड़ दीजिए महाराज। बच्चों ने जब प्रार्थना की तो हनुमान ने कहा कि बेटा मैंने मेरे भक्त पंडित को 10,000 देने की बात कही है, 5,000 कल तेरे बाप ने दिया है, अब 5,000 उस पंडित को दे के आओ तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, समझे कि नहीं? उसकी बेटी की शादी करनी है, हाँ। तब वो बच्चे गए दौड़ के उस पंडित को 5,000 दिया, तो तब जाकर ये कौन छूटा, बनिया छूटा हो, हाँ, छूट गया, तब जाकर छूटा, तब विश्वास हुआ कि ओहो योगक्षेम वहां में हम, भगवान तो थप्पड़ मार के भी लेते हैं, हाँ, उनको बहुत चिंता है भाई, कैसे व्यवस्था करनी है, किधर से व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्था वो करते हैं, लेकिन हम, वो बनिया तो कहेगा कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, मुझे थप्पड़ मारा, मुझे लगता है उसने भी कभी किसी को थप्पड़ मारकर लिया था, समझे कि नहीं? मुझे लगता है, क्योंकि व्यवस्था है, शास्त्रीय व्यवस्था है, कभी उसने किसी के थप्पड़ मारकर लिया था तो आज थप्पड़ मारकर देना पड़ रहा है, थप्पड़ खाकर देना पड़ रहा है, तो ये काम परमात्मा की है, ये बात योगक्षेमम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग, प्राप्त वस्तु की रक्षा क्षेम, योगक्षेम बहम्यम, यही तो कहा है, वही तो शंकराचार्य जी ने कहा। बटुर्वागे ही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वाय कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत् पद्मं यदि भवत अधीनं पशुपते त्वदीयस्त्वं शंभो भवसि भवभारं च वहसि। भक्त को ये बात पूरी तरह निष्ठा के साथ जीवन में अपनानी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें तो हमें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मन परमात्मा के चरण में लगे रहे, यही प्रार्थना उत्तम प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।